नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के सभी नेता इसमें शामिल होंगे। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राधाकृष्णन का एनडीए सांसदों से परिचय कराया। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और सभी सांसदों से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए श्री राधाकृष्णन का सर्वसम्मति से समर्थन करने की अपील की है।
हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें, तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है।
इस बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी।
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम।
मंत्रिमंडल ने ओडिशा में राजधानी क्षेत्र नियंत्रित रिंग रोड के निर्माण की भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और राजस्थान से संबंधित मंत्रिमंडल के फैसलों का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर में रिंग रोड परियोजना से भीड़भाड़ कम होगी और जीवन सुगम होगा। श्री मोदी ने कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल दिल्ली में भारत और चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने 2005 में हस्ताक्षरित राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप सीमा मुद्दे के समाधान के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक स्वीकार्य ढांचे के लिए समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता बताई। दोनों पक्ष सीमा परिसीमन के आरंभिक सफलता का पता लगाने के लिए सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र के अंतर्गत विशेषज्ञ समूह स्थापित करने पर भी सहमत हो गए। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में मौजूदा जनरल स्तरीय तंत्र के अतिरिक्त पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में जनरल स्तरीय तंत्र स्थापित करने तथा पश्चिमी क्षेत्र में जनरल स्तरीय तंत्र के लिए शीघ्र बैठक आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने और मतभेदों के उचित निष्पादन के लिए विभिन्न आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों और आदान प्रदानों का पता लगाने और उन्हें फिर से आरंभ करने पर सहमत हुए। इनमें दोनों देशों के लोगों की एक दूसरे के यहां आवाजाही पर 2026 में भारत चीन उच्च स्तरीय तंत्र की तीसरी बैठक आयोजित करना शामिल है। दोनों पक्ष यथाशीघ्र चीन और भारत के बीच सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने और हवाई सेवा समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए। उन्होंने दोनों देशों में पर्यटकों, व्यवसायों, मीडिया और अन्य आगंतुकों को वीजा सुविधा प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ जयशंकर मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री रूस की 3 दिन की यात्रा पर हैं। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान हो गया है। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल होंगे। ये प्रतियोगिता 9 सितंबर से शुरू होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।